الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور یہ ہے کھلی کامیابی, یہ ہے جو اصل کامیابی ہے, جو بڑی کامیابی ہے. اگر آپ قرآن کریم میں غور کریں تو جگہ جگہ پہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی بات آتی, جہاں بھی جنت کی بات آتی ہے تو انہی لوگوں کے ساتھ پرومسز ہیں جو کہ ایمان لا کے اور صالح عمل کریں. دو ہی چیزیں قرآن پاک میں کہی گئی ہیں. اگر آپ ایمان کو دیکھیں تو ایمان لانا آج کے دور کے اندر ایمان کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے جو آپ کو عمل پہ کمپیل کرے. ایمان تھوڑا بہت یا آگے پیچھے انسان کا ہوتا رہتا ہے, لیکن اصل اس کے ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب کہ انسان پہ کوئی کرائسس اللہ نہ کرے آئے, کوئی فتنے آئیں, کوئی ایسی چیز آئے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل ایمان کس کا تھا. اور جیسے جیسے ہم قرب قیامت کے دور میں, جیسے اب انٹر ہو چکے ہیں, جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے, اتنا ہی زیادہ فتنوں کا دور بڑھتا جا رہا ہے. اور جب بھی فتنے آئیں گے تو وہ اور تو اتنی چیزوں میں نہیں, لیکن ایمان کے لیے فتنے ہوں گے کہ ایمان انسان کا خطرے میں ہوگا. یعنی فار ایگزامپل, ایسی آپ بات کو سمجھنے کے لیے لے لیں تو رحمک اللہ, کہ یعنی ایسے ہوگا کہ اگر ہم مسلمان رہے یا ہم نے اپنا ایمان کسی کے سامنے دکھا دیا تو یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ ہو جائے, ہمارے ساتھ یہ ایسا ہو جائے, ہماری جاب چلی جائے, ہمیں کوئی کچھ کہہ دے, کوئی اس طرح کے شروع کے اندر ٹیسٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ دین شروع ہوا تھا اسلام, اس وقت بھی بہت سخت ٹرائلز تھے اور قرب قیامت میں بھی بہت سخت ٹرائلز ہوں گے. نہ تو اس وقت آسانی تھی کہ ہم کہیں کہ آج ہی مشکل ہے, نہ اس وقت آسانی تھی, نہ آج آسانی ہے. آج اپنی طرح کے چیلنجز ہیں, اس وقت اپنی طرح کے چیلنجز تھے. آپ جیسے جب صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ ان کو ہارڈ ٹائم سے گزرنا پڑا اس ایمان کو پکڑے رکھنے کے لیے. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بہت شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن ہو گئی, دیکھو یہ ایسا ہو گیا, ایسا نہ ہو جائے. بعض دفعہ صرف جسٹ خدشات کی بنا پہ ہم اپنے ایمان کو چھپا لیتے ہیں یا اپنے ایمان کو بالکل اس کے اوپر اس طرح سے نہیں چلتے جیسے چلنا چاہیے. تو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ایمان کے اوپر چلنا مشکل ہوتا جائے گا, آسان نہیں ہوگا. اور اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی یہ اگزامپل سیٹ کریں اپنے گھروں کے اندر کہ ایمان پہ مضبوط رہنا کتنا ضروری ہے. نو میٹر واٹ, کوئی کچھ بھی کہے, کوئی کچھ بھی کیسا بھی دیکھے ہمیں, کوئی کچھ بھی سمجھے, یا ہمیں اگر کوئی دنیاوی نقصان بھی اٹھانا پڑ جائے, آخرت کا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن دنیاوی نقصان کوئی اٹھانا بھی پڑ جائے تب بھی ایمان کو گیو اپ نہیں کرنا چاہے کوئی چیز بھی جائے. جب یہ اگزامپل ہم سیٹ کریں گے اور ہم خود بھی اس کے مطابق زندگی گزاریں گے, تبھی ہم اپنے بچوں کے سامنے بھی یہ چیز کو ایز اے رول ماڈل آ سکتے ہیں کہ دیکھو ایمان کتنا ضروری ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نا سورہ نساء میں فرمایا منافقین کی بات, مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی لا الہ اولائی, کہ وہ نا درمیان میں رہتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو ایسا تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو کہ کوئی کہے کہ میں دوسرا کوئی دین اپنا لوں, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دینا تاکہ مجھے کوئی ایسا پہچانے ہی نہ, مجھے کوئی سمجھے ہی نہ مسلمان, اور میں بس بیچ بیچ میں نہ رہوں. ادھر کو جاتے ہیں تو ہمارے اندر تھوڑی سی جو ایمان کی اسپارک ہوتی ہے نا, تو پھر ہمیں اندر ہوتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. پھر ہم ادھر سے ادھر کو آتے ہیں تو پھر جب یہاں کے خطرات پتہ چلتے ہیں کہ ہائے ایمان کے ساتھ کتنے ہوں, میری یہ چیز کا مسئلہ ہو جائے گا, مجھے کسی کو امیگریشن کا ہے, کسی کو جاب کا ہے, کسی کو بچوں کی کسی سیفٹی کا ہے, کسی کو اپنی سیفٹی, तो जब यहाँ पे आते हैं तो कुछ खतरात महसूस होते हैं, फिर उधर को भागते हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर उधर लगता है कि अरे नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, फिर इधर को आते हैं। ये ना हो कि हम ऐसे उसमें पेंडुलम की तरह हो जाएंगे, कभी इधर कभी इधर। ये मुनाफिकीन का हाल था। ईमान वाले का ईमान जो होता है ना वो मजबूत होता है, एंड दैट्स रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू जन्ना। ऐसा वाला ईमान नहीं चाहिए आखरत में जो कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर कभी इधर झूल रहे हैं बस, जिधर को फ़ायदा नज़र आया उधर को हो गए, अगर इधर कोई नुकसान नज़र आया तो जल्दी से उधर चले गए, उधर नुकसान नज़र आया आप खुद ज़मीर ने मलामत की तो इधर को आ गए। इस तरह से करने वाला ईमान जन्नत में नहीं ले जाएगा। हार्डशिप होगी यहाँ पे, और आगे आगे का वक्त आप देख रहे हैं ना कि कितना मुश्किल आ रहा है, हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मुश्किल से मुश्किल आ रहा है। मैं सोचती हूँ कि हम चीज़ों को फोर्सी जब करते हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे वक्त में ही थोड़ा थोड़ा मुश्किल आता है, हमारे बच्चों के वक्त में कितना होगा, और क्या उनके पास ऐसा ईमान है कि वो फाइट कर सके इन सारे चैलेंजेस को, या इनके सामने खड़े रह सके, फिर उनके आगे बच्चों का क्या आएगा। यानी आगे का वक्त ईमान के लिहाज से बहुत मुश्किल वक्त है। आप फलस्तीन की सूरत हाल देख रहे हैं, क्या उनका कसूर है? सिर्फ मुसलमान होना, ये कसूर है बस, और कोई कसूर नहीं। यहाँ दुनिया में कहीं पे भी आप देख लें, जहाँ पे भी मुसलमान इस वक्त क्राइसिस में है ना, उनका ओनली एक कसूर है, और वो है कि वो मुसलमान है। वो किसी और मज़हब से होते तो फिर ये चीज़ नहीं होनी थी। तो इस्लाम के ऊपर चलना मुश्किल हो, जैसे हम आप देख रहे हैं इस्लाम पे चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा इस्लाम का नाम ही ना लोगों के लिए ये हो जाएगा कि अच्छा ये मुसलमान है तो बस इसके साथ तो ये या ये। उस वक्त क्या हम खड़े रह सकते हैं? उस वक्त क्या हम अपने ईमान को इतना होल्ड कर सकते हैं? ईमान हमारे लिए इतना प्रेशस है कि हम कहें कि जान जाए तो जाए, ईमान ना जाए? ये बातें आसान है करनी, लेकिन ये जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना तो बहुत मुश्किल है। और इसके लिए रोल मॉडल्स थे सहाबा कराम, उन्होंने करके दिखाया, इस पर चल के दिखाया, उन्होंने हमें ये बता दिया अपनी ज़िंदगियों से कि जब कभी ऐसी मुश्किलात आए तो देखना ईमान को हाथ से ना जाने देना। इसी वजह से आज देखें उनका नाम जिंदा है, क्योंकि वो ऐसे नहीं थे हमारी तरह के बस ये चीज़ छोड़ दी, अच्छा चलो इसमें मुश्किल आ रही ये छोड़ दो, दूसरी तरफ देखा इसमें मुश्किल आ रही ये छोड़ दो, किसी ने कुछ छोड़ा किसी ने कुछ, आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोग हमें ऐसा ना समझ लें, वैसा ना समझ लें, ये ना कह दें, वो ना कह दें। तो ये कब तक छोड़ेंगे? एक दिन तो वो आ जाएगा कि आपका मुसलमान होना भी किसी की आंख में नहीं भाएगा, फिर क्या करेंगे, अपना इस्लाम छोड़ देंगे? तो ये नहीं हम छोड़ सकते। अगर आपका बिजनेस है, कोई उस पर आए ना आए, उसको पसंद आए ना आए, मैं मुसलमान हूँ और मैं ऐसे ही रहूँगा, और आपके कोई कहीं पे भी आपकी कोई जॉब है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप प्रोवाइड करते हैं, आपको लगता है कि इसके अंदर मुझे नुकसान हो जाएगा सिर्फ इस वजह से कि इसको पता ना चल जाए मैं मुसलमान हूँ, इट डज़ंट मैटर, क्योंकि कोई भी दुनिया का नुकसान उठा लेना वो बेहतर है बजाय अपने आखरत में नुकसान करें। तो ईमान पहली चीज़ है। हम सोचते तो है ना हमारे ईमान तो बहुत, हम तो ईमान वाले ही हैं क्योंकि हमने अपने नाम मुसलमानों के रख लिए इसलिए हम ईमान वाले हो गए, ऐसा नहीं है। ईमान वाले तो फिर वरना तो मुनाफिकीन को भी ईमान वाले कहा जाता, उनके पास तो कोई ईमान नहीं था, अल्लाह ताला ने तो उनको ईमान वाला डिक्लेयर ही नहीं किया। तो ईमान इसका नाम नहीं है कि आपका नाम क्या है और आपका मुसलमानों वाला नाम है या नहीं। ईमान इसका नाम भी नहीं है कि आप मस्जिद जाते हैं या नहीं जाते, वो के मुनाफिकीन तो सबसे ज़्यादा मस्जिद जाते थे। ईमान आपके दिल में पहले है, फिर आपके अमल के अंदर आता है। आपका दिल कितना मजबूत है इस रास्ते के अंदर, और आप अल्लाह ताला के दीन को कितना मजबूती के साथ थाम के चलने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए साथ ईमान के साथ ही अमले साले की बात है। अमले साले क्या है? आप जब आमिलु सालिहात आता है ना, तो इसका मतलब है कि आप अपने ईमान को प्रैक्टिकली कितना इसके ऊपर चल के दिखा सकते हैं। जैसे समझ लेंगे किसी चीज़ के लिए पासपोर्ट है, आप कहाँ से हैं, आप अपना पासपोर्ट दिखाते हैं ना कि मैं यहाँ से हूँ, आपका पासपोर्ट आपका साले अमल है जो आप दिखाते हैं कि मैं मुसलमान हूँ आपके, वरना मुंह से बोल देना मैं मुसलमान, इससे नहीं कुछ होता जब तक आप अमले साले नहीं करके दिखा रहे। और अमले साले है क्या? अमले साले ये है कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए सुन्नत के मुताबिक किया जाए वही अमले साले हैं, वही नेकियां हैं। ये दो शरायत पूरी होती हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया फिर है जन्नत। तो हम अगर पहली चीज़ को ही देखें, ईमान को देखें, तो पहले उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, उसके बाद फिर साले अमल को, यानी अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली इसके ऊपर चलने की ज़रूरत है। अगर चलते नहीं हैं और सिर्फ ईमान के दावे कर रहे हैं, वो भी कंप्लीट नहीं। अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं बहुत बहुत करने वाली हूँ और मैं इनाफ कर रही हूँ, और नहीं, जब तक अल्लाह ताला ने फरमाया यही अल्लाह दीना अमन खलूफ सिल्म कैफा, ए ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आधे तीतर आधे बटेर नहीं चलेंगे कि हम ये सोचें इसी से हमें जन्नत मिल जाएगी। ये आधा आधा काम नहीं होगा। आप आधी आधा खाना बनाएं, आधा छोड़ दें, आधा कच्चा छोड़ दें, वो किसी के खाने के काबिल नहीं होगा। आप घर में एक कदम रखें एक बाहर रखें, गाड़ी में एक कदम अंदर रखा एक बाहर रखा हुआ, गाड़ी चला दें तो क्या होगा। कोई चीज़ भी अधूरी कहीं पे भी कबूल नहीं है। तो अधूरा ईमान अल्लाह के पास कैसे कबूल होगा, अधूरा अमल कैसे कबूल होगा। लिहाजा ईमान के साथ साले अमल, फिर ये है कि ये है कामयाबी जो अल्लाह ताला ने फरमाया, बड़ी कामयाबी है ये, बड़ी कामयाबी ये समझ लो, ये बंदा है जो सक्सेसफुल हो गया। बाकी सक्सेस के जो भी हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, इट डजंट मैटर कि मेरी डेफिनेशन क्या है सक्सेस की या आपकी क्या है। फौज कामयाबी और कबीर बड़ी कामयाबी उन्हीं की है जो ईमान ला के साले अमल करके जन्नत में एंटर हो जाए, बाकी सब नाकाम है। तो अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल करें जो ईमान ला के साले अमल करने वाले हैं। और अल्लाह ताला वाकई हमें सिर्फ बातों की हद तक नहीं बल्कि अमल में हमें आगे बढ़ाए। बातें आसान है, बातें मुनाफिकीन भी बहुत करते थे, लेकिन साले अमल किसका है ये बात पता चलनी चाहिए कि हम किसी से भी ना डरे जब हम अमल करने लगे। हमें एक अल्लाह ताला का बस डर हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो ईमान वाले ना वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते। कोई आप मुझे मलामत करें कि ये आप कैसी क्यों हैं, वाई शुड आई केयर। मेरे लिए अल्लाह ताला की रज़ा वो ज़्यादा होनी चाहिए कि मैं उसकी केयर करूँ, ना कि मैं आपकी बात की केयर करूँ। इस तरह का ईमान होना चाहिए, इस तरह का साले अमल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर वक्त हम डरते ही रहे। मोमिन डरने वाला तो होता नहीं है। पता नहीं हम क्यों हर एक से डरते हैं, हर एक को देखते हैं, हर एक का चेहरा हमारे सामने होता है, ये भी खुश हो जाए, 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 ये सब कभी भी नहीं खुश होंगे। मगर एक अल्लाह को ज़रूर आप खुश कर सकते हैं जब आप ईमान और साले अमल के साथ चलें। तो जिस दिन हम कह देंगे ना आई डोंट केयर अबाउट पीपल, आई जस्ट केयर कि अल्लाह मेरे से खुश हो जाए, उस दिन समझ लें आप वाकई ईमान वाले बन गए। और जिस दिन आप लोगों को राज़ी करने में लगे रहेंगे या उसकी इसकी शक्ल देखते रहेंगे, तो अब अभी आपका ईमान बस ऐसा ही है कि कभी इसकी तरफ डोल रहे हैं, कभी इसको खुश कर रहे हैं, कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको। और ऐसे लोग हमेशा ऐसे ही रहते हैं, उनसे कभी कोई खुश नहीं होता, क्योंकि इसको खुश करेंगे तो ये नाराज़, उसको खुश करेंगे तो वो नाराज़, उसको खुश करेंगे तो वो नाराज़। इसलिए जब अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करनी है तो ये समझ लें लोग नाराज़ होते हैं तो होते हैं, एक दिन अपने माइंड में ये बात बिठा लें, उसके बाद फिर परवाह ना करें। एक दिन आपने बस ये फैसला जब कर लिया ना तो फिर परवाह ना करें। लेकिन जब तक आप ये फैसला नहीं करते तब तक आप पेंडुलम ही रहेंगे बस सारी ज़िंदगी। और आप यकीन करेंगे किसी की भी नज़र में जचने वाले नहीं होंगे। कि अगर आप ये सोच रहे मैं जच जाऊँगी किसी की नज़र में, ना जचने वाले नहीं होंगे आप। फिर भी कोई आपसे खुश नहीं होगा, याद रखें। जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए उससे मखलूक कैसे खुश हो सकती है। दिल तो अल्लाह ताला के हाथ में है, उसने ही मखलूक को खुश करना है आपसे। और अगर अल्लाह ही खुश नहीं है तो मखलूक का दिल भी आपसे कभी खुश नहीं करेगा। याद रखिए जो अल्लाह को राज़ी कर लेता है और मखलूक को चाहे नाराज़ कर दे, अल्लाह ताला उस मखलूक को भी उसके दिल भी इसकी तरफ से राज़ी कर देगा। लेकिन जो अल्लाह ताला को नाराज़ कर देता है मखलूक को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ताला इस मखलूक का दिल भी उससे नाराज़ कर देता है। इसलिए कभी भी इस चीज़ की तमा ना रखे अल्लाह को राज़ी करने की। और अल्लाह ताला राज़ी कैसे होता है, ईमान और साले अमल से। बस तो अल्लाह ताला इसकी तौफीक हमें अता फरमाए हमेशा। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका वनतूबु इलैक।